अमृता अपने सपने लिखती थी डायरी में, उनींदे सपने, गहरी नींद के सपने या जागती आंखों से देखे सपने। जो सपने उन्हें याद रह जाते थे वो लिख जाते थे। जब वो बहुत बीमार थी उस वक्त उन्होंने जो सपने देखे, उनमें से कुछ सपने मैं आपको सुनाऊंगी। ये सपने 2001 से 2003 के बीच में थे। कुछ सपनों पे कविताएं लिखी, कुछ सपने उड़ने के लिए छोड़ दिए। उनके अंतरात्मा की चेतना तक पहुंचाते हैं ये सपने, दिल को छू जाते हैं और झकझोर कर रख देते हैं। सुनते हैं मैं तुम्हें फिर मिलूंगी काव्य संग्रह में दर्ज अमृता के कुछ सपने, गाथा ऐप पे पल्लवी गर्ग की आवाज में। सबसे पहले सुनाऊंगी 2001 के सपने। पहला सपना, देखा शिव खड़े हैं, साथ में औरत और मर्द की कई सूरतें, पर बड़े बड़े ग्रंथों की सूरत में। मैं शिव को पूछती हूं, ये कौन है? वे कहते हैं, सब शिव सागर की लहरें हैं। मैं पूछती हूं, शिव, मैं भी तो तुम्हारे सागर की एक लहर हूं, फिर बाहर क्यों खड़ी हूं? शिव जवाब नहीं देते, सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। दूसरा सपना, सारा दिन अजीब नींद की खुमारी छाई रही। दोपहर 3 बजे सो गई, रात के 8 बज गए, अभी भी नींद नहीं खुल रही थी। अर्ध निद्रा का आलम था कि सामने एक वृक्ष देखा जिसके तने से पत्ते झड़ रहे थे। एक वीरानगी का एहसास था। आवाज आई, ये पत्ते झड़ जाने दो, फिर पेड़ के शिखर पर एक फूल खिलेगा जिसमें पूर्ण खुदा खिलेगा, जिसमें पूर्ण खुदा खिलेगा। तीसरा सपना, आज सोते वक्त ऊंग सी गई, आज सोते वक्त ऊंग सी गई, पूरी नींद में नहीं थी। जब एक पेड़ की पतली सी टहनी झूलती आई, टहनी एक लाल रंग की थैली थी। मैंने पकड़ी, देखा कि ये तो मेरे बाप दादा की मोहरों वाली थैली थी। फिर देखा कोई जल्दी जल्दी कुछ कागज जला रहा है। मैं उसके पास गई, उसने सिर उठाकर देखा और कहा, तुम्हें हर लेन देन से मुक्त किया है, तुम्हें हर लेन देन से मुक्त किया है। चौथा सपना, अपनी एक स्टील की अलमारी खोली, भीतरी खाने में एक और खाना देखा जो पहले कभी भी नहीं देखा। हैरानी से वो खाना खोला, भीतर से रोटी की एक थाली निकली। देखकर लगा मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। वहीं खड़े होकर मैं रोटी खाने लगी। पूड़ी के साइज की तंदूरी रोटी थी, बहुत ताजा और मुलायम, बहुत ताजा और मुलायम। पांचवा सपना, जैसे एक साय सा देखा कि एक जगह शिव धूनी सेक रहे हैं। मैं बाईं तरफ उनके पास बैठी हूं, और दाईं तरफ पार्वती नृत्य कर रही हैं, और दाईं तरफ पार्वती नृत्य कर रही हैं। छठा सपना, मुद्दत बाद साईं को देखा। वे किसी को कह रहे थे, गुरु पूर्णिमा की प्रभात है, उठो अमृता मैया के पास जाओ, अमृता मैया के पास जाओ। सातवां सपना, एक अजीब घटना थी कि सारा दिन घर से धूप और अगरबत्तियों की खुशबू आती रही। जिस कमरे में जाऊं खुशबू थी, हालांकि कहीं कोई अगरबत्ती नहीं जली हुई थी। हैरान होकर अपना बदन सूंघा, सारे बदन से वो महक आ रही थी। सारा दिन ये आलम रहा, पर संध्या होते होते ये महक खोने लगी। इमरोज को भी ये बात बताने से झिझक गई कि वे हंस देंगे। आठवां सपना, तेरे नगमे जिस काल में भी होंगे, वो काल मेरा है। आज रात आसमान से ये आवाज सुनी, कोई गा रहा था। मैंने ना कभी इस तरह की आवाज सुनी है, ना इस जैसी लय। जब जाग आई, समय रात्रि के 11:30 का था, समय रात्रि के 11:30 का था। नवा सपना, सुबह सुबह अजीब सपने से जागी। हीर की माँ हीर के विवाह के समय बहुत रोते हुए दिखी। कह रही थी, अरे तेरा मामा कहाँ से लाऊं, अरे मेवाड़ वालों मैं कहाँ जन्मी, मेरा भाई कहाँ जो आज मामा होकर आए। वो फिर चूचक से कह रही थी, अरे ब्याह दे उसे, अरे ब्याह दे उसे जहां वह चाहती है। तेरी पगड़ी को तब लाज ना आई जब धर्मी मान चला गया। तू राजपूत था, कैसे दीन धर्म छुपा लिया, कैसे दीन धर्म छुपा लिया। दसवां सपना, देखा कुछ गद्दी लोग मिलकर बर्फ से नीचे उतर रहे हैं। चारों ओर बर्फ थी, सारी जमीन पर भी। वे गा रहे थे ताकि रास्ता आसान हो जाए। वे नीचे के गांव नगरों में उतर रहे थे बर्फीले दिन काटने के लिए। देखा एक गद्दी बीमार सा है, जख्मी भी दाईं टांग से। पैरों की जूती में इतने छेद हैं कि पैरों तले की मोटी बर्फ जूती में कीर्चों की तरह चुभती है। वो बर्फ में धंसने लगा। अचानक बांसुरी की आवाज आई। वो हैरान था। तभी कृष्ण दिखे, जो मुस्कुराकर हाथ के इशारे से उसे बुला रहे थे। वो सारा जोर लगाकर बर्फ से निकला। करीब जाने पर कृष्ण ने हाथ से एक ओर इशारा किया। वो उस ओर गया तो बर्फ की एक दीवार की ओट में गर्म पानी का चश्मा था। वो कपड़े उतार कर जी भर कर नहाया और लगा वो तरोताजा हो गया है। कपड़े भी बर्फ पर उतारे थे जो आधे गीले आधे सूखे थे। वो पहनकर बाहर आया तो कृष्ण ने अपने डब्बे से रोटी निकालकर एक बड़ा सा टुकड़ा उसे खाने के लिए दिया। और साथ ही एक रास्ते की तरफ इशारा किया जो शायद गांव नगर तक पहुंचने का छोटा सा रास्ता था। ये सारा दृश्य शायद मेरे लिए एक संकेत है कि अब मैंने मौत के चश्मे में नहाना है, जहां सब दुख रोग दूर हो जाएंगे। फिर कृष्ण मुझे रोटी देंगे और किसी रास्ते का संकेत भी देंगे ग्यारहवां सपना। अभी गुजरती रात में देखा कोई तीन बच्चे आए, एक सी सूरत लिए, हंसते हंसते। उनके हाथ में फूलों का एक एक गजरा था। वे तीनों गजरे मेरे पैरों को बांध गए। सुबह काकाश्री का टेलीफोन आया। मैं हैरान सी बैठी थी। रात की घटना सुनाई। वे हंस दिए। वो ब्रह्मा विष्णु महेश थे। हैरान सी बैठी हूं। बारहवां सपना। देखा आसमान पर हवन हो रहा है। मंत्रों की आवाज सुनी। पीले रंग के फूलों से एक थाल भरा हुआ था। कुछ फूल नीचे जमीन पर भी गिर रहे थे। देखा कि नीचे धरती पर साईं काका बैठे थे, गले में गहरे पीले फूलों का हार, और उनके चेहरे पर एक नूर था। आवाज आई जाने कहां से कि आज काका को ब्रह्म विद्या हासिल हुई है, आज से ये ब्रह्म ऋषि हुए। तेरवा सपना। शाम को लगभग 6 बजे ही सो गई थी। न जाने किस समय आदि बिंदु को देखा। सोच रही थी जब आदि बिंदु में विस्फोट हुआ होगा तब क्या हुआ होगा। सारे पासार के बाद फिर बिंदु में ना जाने क्या वास्तविकता होती है कि आंखों के सामने सभी सितारे इतनी तेजी से गर्दिश में आए कि इतनी रोशनी देखी नहीं गई। बेहोश हो गई। पता नहीं कितनी देर बेहोश पड़ी रही। होश में आई तो सब कुछ याद था। आंखों के सामने अपनी बेहोश काया भी, ये थे अमृता के 2001 के सपने। अब सुना रही हूं आपको उनकी देखे हुए 2002 के सपने। 2002 का पहला सपना। आज फिर जंगल में घूमती एक बहुत खूबसूरत तालाब तक पहुंची। चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे। मैं उसमें नहाने लगी। आवाज आई, ये शिव सागर है। एक बार आगे भी शिव सागर में नहाई थी। सोचा मुझसे कोई गुनाह तो नहीं हो रहा कि देखा उस नील सागर पर सूर्य की किरणें क्यों चमक रही, जैसे शिव मुस्कुरा रहे हों, दूसरा सपना। गई रात बहुत दर्द था। जैसे हड्डियां टूट रही हों। नींद सी आ गई। देखा कि मेरी हड्डियां टूटती जुड़ती एक गुच्छा सा होकर ओम की सूरत बन गई। ओम की सूरत बन गई। तीसरा सपना। सारा साल बीमार और बिस्तर पर बीता था। दाई टांग के ऑपरेशन के बाद सिर्फ जिस्म का दर्द था और डिप्रेशन। आज रात देखा मेरी स्थूल काया से मेरी सूक्ष्म काया निकलकर कहीं जा रही है। कुछ दूर कुछ लोग दिखे, बहुत से, पर अंधेरा था, पहचान न सके। पर वह सूक्ष्म काया उनके पास पहुंची, एक एक के सिर पर हाथ रखा। मैं आवाज भी सुनती रही। वह हर एक को कह रही थी, आपके भीतर मोहब्बत पैदा हो और आपको मन की शांति मिले। बहुत देर बाद वो लौटी, फिर एक जगह खड़ी हो गई। उन लोगों को दूर से देखा और सबको नमस्कार की। फिर वो मेरी स्थूल काया के पास आकर उसमें समा गई। उसमें समा गई। तीसरा सपना। देखा मैं यह काया छोड़ चुकी हूं। घर के लोगों ने अग्नि दी और जब अग्नि शांत होने लगी सब चले गए। तब मेरी सूक्ष्म काया आई हाथ में जलता दिया लेकर और चिता के पैरों की तरफ दिया रखकर चली गई और चिता के पैरों की तरफ दिया रखकर चली गई। चौथा सपना। देखा सामने साईं खड़े हैं। मैंने उनके मस्तक पर तिलक लगाया, लंबी दिशा का वर्टिकल। साईं उसी तरह खड़े रहे। फिर देखा कोई हाथ नहीं था, पर मेरे मस्तक पर भी उसी तरह का तिलक लगा हुआ था, लंबी दिशा का। खुदाया तेरी तू जाने, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। पांचवा सपना। रात के अंधेरे में रजाई का सिरा सिर की ओर से भी लपेट कर लेटी हुई थी कि गहरे अंधेरे में सूरज दिखा। पहले शांत, फिर जरा तीखा। हैरान से घबरा कर उठी। ये था उनका 30 नवंबर 2002 को देखा हुआ आखिरी सपना। अब मैं आप लोगों को सुना रही हूं 2003 का एक सपना। ये अमृता का आखिरी सपना है जो इस संग्रह में है। आज फिर आदि बिंदु के दर्शन हुए। सोच रही थी जब इसमें विस्फोट हुआ होगा क्या हुआ होगा। इतना ही सोचा था कि विस्फोट का सारा काल सामने आ गया। आदि बिंदु में से जोर की चिंगारी उड़ी, जैसे सितारे गर्दिश में आए हों। कई कई अंगारे मुझ पर गिरे, पर इतना तेज देखा नहीं गया। बेहोश हो गई, पर इतना तेज देखा नहीं गया। बेहोश हो गई। जुलाई 2003 के इस सपने को सुनाने के बाद अमृता के साथ उनके इस आखिरी काव्य संग्रह मैं तुम्हें फिर मिलूंगी का सफर मेरे लिए समाप्त नहीं हो रहा है, एक सफर का आरंभ हो रहा है। शायद मेरा भी और आप में से भी बहुतों का। वैसे अमृता दुनिया से कूच तो कर गई हैं, पर किसी ना किसी रूप में हम सब में वो जीवित रह गई हैं। वो कहती हैं, जीने लगो तो करना फूल जिंदगी के हवाले, जीने लगो तो करना फूल जिंदगी के हवाले, जाने लगो तो करना बीज धरती के हवाले, जाने लगो तो करना बीज धरती के हवाले। गाथा पे अभी आप सुन रहे थे पल्लवी गर्ग की आवाज में अमृता प्रीतम जी की लिखी हुई आखिरी काव्य संग्रह मैं तुम्हें फिर मिलूंगी।